پھر ایک اور نبی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، ان کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی، بس وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی۔ سچ ہے کہ نہیں؟ آج بھی تو دیکھیں زمین کی اصلاح ہو چکی ہے، اس کے باوجود لوگ فساد پھیلاتے ہیں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے پر احزن بند کرنا بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم شعیب کی کہانیاں پڑھیں، اسی سے نواں پارا شروع ہوتا ہے، اس کو اکٹھا لکھ کے پھر انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی بات کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے اوپر۔ اور وہ کیا ہے کہ جب دین کی چوٹ کسی کی اکانومی پہ اور اس کے منی میٹرز پہ پڑتی ہے تو لوگ اس وقت دشمن ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دین کو صرف باہر تک رکھو، کہاں تک؟ مسجد تک، اور جہاں کمانے کا ذریعہ آ جائے اور باقی چیزیں آ جائیں اس پہ کسی قسم کی تنقید کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا لکھ ہی لیجئے تاکہ اگلے پارے کے ساتھ ہی شروع کریں، یہاں سے نواں پارا بھی شروع ہو رہا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، لنخرجنک یا شعیب، ہم تجھے ضرور نکال دیں گے شعیب اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے، یا پھر دوسری صورت یہ کہ تم واپس پلٹ آؤ ہمارے اس دین میں۔ حضرت شعیب کہنے لگے کہ کیا ہم پلٹ آئیں تمہارے دین میں اگرچہ ہم ناپسند کرتے ہوں اس کو؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کون تھی؟ اپنے دور کے بگڑے ہوئے مسلمان تھے۔ یہاں ایک بات چھوٹی سی نوٹ کر لیں کہ ہر نبی جس کے حالات ہم پڑھ رہے ہیں یہ اپنے دور کے مسلمان تھے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں بار بار کہ دیکھو ان کے عقائد میں اتنی بگاڑ آ گئی کہ ان کو اللہ کے نبیوں کی باتیں سمجھ نہ آئیں۔ بہت مالدار قوم تھی، تجارت پیشہ تھی، ان کا مسئلہ کیا تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے اور لوگوں سے بیگار کے پیسے ٹیکسز کی صورت میں وصول کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو بھیجا۔ اب جب حضرت شعیب نے ان کے سامنے آ کر اللہ کا پیغام رکھا تو ان آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے بڑے لوگ، بڑے کون؟ جن کے مالی مفادات پر چوٹ پڑتی تھی، جن کو حضرت شعیب کی اس دعوت پر عمل کرتے ہوئے اپنے کاروبار بگڑتے ہوئے دکھ رہے تھے، انہوں نے دھمکیاں دے دی کہ ہم آپ کو یا تو اپنی بستی سے نکالیں گے یا پھر آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ تو حضرت شعیب پہ تھریٹ تھا کہ نہیں؟ آج امت مسلمہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھریٹ فیل کرتی ہے، نہیں نہیں پھر یہ دھمکی ملی، پھر ہماری ایڈ بند ہو جائے گی، پھر ہمیں فلاں نہیں ملے گا، فلاں جگہ ہمارا نام نہیں آئے گا، ہمیں اس جگہ سے نکال دیں گے۔ حالانکہ حضرت شعیب کا جواب سنیے، قال ولو کننا کارہین، کیا زبردستی میں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلم ہونے کے باوجود تمہارے نان اسلامک چیزوں کو ماننے لگے؟ ہم اگر ایسا کریں تو کیا ہوگا؟ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے، اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں جبکہ اللہ ہمیں اسے نجات دے چکا، ہمارے لیے تو اس کی طرح پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں۔ دعا کیجیے آج ہم بھی ساری دنیا کو یہ کہہ دیں، اسلام کا ایک اپنا اکنامیکل سسٹم ہے، ہمیں کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ یہ کہ ہمارا رب ہی سچ ہے۔ یہاں عجزی دیکھیے کہ ہم بڑی بات کہہ تو رہے ہیں لیکن اللہ کی مدد کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے اس سے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا، اور ساتھ ہی دعا کر دی ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ آج کی دور میں یہ کیا جملہ، تم مولویوں کی بات مانو گے تو کاروبار ختم ہو جائے گا۔ آپ کو ان کے سارے جملے سن کر بالکل آج کے دور کا بزنس مین نظر آئے گا، اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ نے آج بھی ہدایت اور توفیق دی ہے وہ اسی طرح سے۔ دیکھیے لوگ ہر دور میں یہ کہتے ہیں کہ دین کو بس نماز روزے تک رکھو، وہ یہ کہتے ہیں کہ दीनदारों को या दीन को कहाँ हक पहुंचता है कि वो हमारी स्टॉक एक्सचेंज में घुसें, वो हमारी बिजनेस पॉलिसीज को देखें। अब जब वो इस्लाम के नाम पर ऐसी बातों को सुनते हैं तो वो परेशान होने लगते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि अगर अल्लाह का दीन हमें नमाज रोजा सिखाता है तो वही हमें इकोनॉमिक्स भी सिखाता है। और याद रखिए कि दीन इस्लाम अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है वो हमें सिर्फ दुनिया में चंद चीजों की बातें सिखाने के लिए नहीं आया, बल्कि सब कुछ। अगर ऐसा होता, अगर दीन का एक जुज़वी तसव्वुर होता, नमाज रोजा हज ज़कात, तो ये 6,000 से ज्यादा आयतों की क्या जरूरत थी? एक छोटा सा बुकलेट होता, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम सिखा दिए जाते। लेकिन ये एक खास टिपिकल किस्म की मजहबी सोच होती है कि लोग सोचते हैं कि दीन पे आएंगे तो चल नहीं सकेंगे। हालांकि अगर आप सहाबा की जिंदगियां देखिए, अब्दुल रहमान बिन औफ इतने बड़े ताजिर थे, आप कह लीजिए कि यूनिवर्सल या इंटरनेशनल लेवल के ट्रेडर थे, इसके बावजूद 5 वक्त के मस्जिद के नमाजी थे और अशरे मुबशरा में शामिल थे। जब इनका काफिला मदीना में आता था सामान से भरा हुआ, तो मदीने की जमीन में रश आ जाता था ऊंटों के कदमों की आवाज से, लेकिन उनकी दौलत इनको कुछ नुकसान नहीं दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक देखिए, ताजिर भी हैं और असाबिकून अव्वलून भी हैं। ये तो नहीं कि इस्लाम दीन को माना नहीं देता, दीन से नहीं। और ये आज हमारा ख्याल है कि अगर दुनिया में से इंटरेस्ट खत्म कर दिया तो सब गरीब होंगे, कि अबू बकर और उमर और इन बाकी लोगों के पास जो दौलत थी वो इस किस्म की थी? नहीं थी। ये शैतान का फैलाया हुआ धोखा है। आज जिस जाल में दुनिया फंसी हुई है उसके अंदर ये फीलिंग दे के लोगों को बिल्कुल कमजोर कर दिया, जरूरत ही नहीं पैदा होने देते। और इसी से आप देखिए कि हमारी सोच बदलेगी। हर दौर के इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो यही सोच रखते हैं कि दीन पे अमल करके काम नहीं हो सकता। आज हमारी भी ये सोच बन गई। अच्छा, इसे एक और ऑपोजिट वे भी हुआ, जिसके पास 4 पैसे देखे हम उससे बदगुमान, ये पैसे वाले अल्लाह इनको पूछेगा। भाई क्यों पूछेगा? ये कमाते होंगे हराम से, होगी रिश्वत, होगा सूद, ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह। देखिए इस्लाम कैसे सिखाता है, 1 साल के बाद ज़कात फर्ज होती है। इतना है कि आप खा लें पी लें फिर रख भी लें उसको कि 1 साल के बाद ज़कात दें, इस्लाम तो आपको इसकी बात कहता है। तो ये क्या सारा पैसा कमाया नहीं था? आज लोग कहते हैं सूद के बगैर कमा के तो दिखाओ, तो कमा के दिखाया, हमारी तो नस्बत है उन लोगों से। तो इसलिए आज हमें अपनों के साथ बात करनी है, फिर पता चलेगा। दूसरी तरफ हम जब दूसरों के साथ बात होते हैं तो फिर क्या होता है कि हम उनके उनसे मरूब होते हैं। आइए दुआ करते हैं कि ये मरूबियत खत्म हो जाए। आज अगर हम आप इन सारी चीजों पे स्टैंड नहीं लेंगे, ये मौजू बार बार आएगा कुरान में, क्योंकि पेट में जो चीज जाती है वही आमाल की सूरत में बाहर आती है। जब तक हमारे उम्मत मुस्लिमा के मर्दों के माल में से सूद नहीं निकलेगा, उम्मत नहीं बन पेगी। ये तो सिंपल सी बात है। ये ऐसी है जैसे आप अगर अरबी में लफ्ज सुने ना रिबा, तो रिबा सा क्या होता है? गिल्टी को कहते हैं, ट्यूमर। एक असल इजाफे पे ऊपर होता है, यूं होता है जैसे आप देखें ना, इस टेबल पे आप कुछ रखेंगे तो एक खास हक तक तो ये कबूल करेगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर हीप बनेगा चीजों का, फिर ढेर ही लग जाएगी, तो असल एक्सपेंशन तो नहीं हुई ना। तो रिबा लफ्ज क्या है? ऊपर चीज बढ़ती है लेकिन एक्सपेंड नहीं हो रही। इसी तरह जब कमाई में कोई इस किस्म की खियानतें आ जाती हैं तो बाहर हीप ऑफ मनी बनता है, एक्सपेंशन नहीं होती। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस किस्म की तमाम चीजों से पाक कर दे, जिसकी वजह से घरों का सुकून लुटा हुआ है। अब इसके बाद अल्लाह ताला ओवरऑल बाकी अंबिया की बातें करने के बाद फरमाया कि ये नबियों के किस्से हम आपको क्यों देते हैं। वमार सल नफी करियतिन मिन नबीयिन इल्ला खसना लहा बिल वासाई वद्दर्राई लअल्लहुम यद्दर्रऊन। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में नबी भेजे हों और उस बस्ती के लोगों को पहले तंगी और सख्ती में मुबतला ना किया हो इस ख्याल से कि शायद वो आजजी पर उतर आए, फिर हमने इनकी बदखाली को खुशहाली से बदल दिया। ये पहली किस्त है। याद रखिए, अल्लाह पहले नेमतें बढ़ाता है फिर पकड़ता है। फिर हमने इनकी बदहाली को खुशहाली से बदल दिया, यहां तक कि वो खूब फले फूले और कहने लगे हमारे बड़ों पर भी अच्छे और बुरे दिन आते ही रहे। आज देखिए किसी को आप कहें ना, देखा ये वजह थी तो कारोबार डूब गया या मनी चली गई, तो वो कहते नहीं ये तो होता है बिजनेस में, ये तो होता है, कभी नफा कभी नुकसान, यही बात उन्होंने कही। यानी इबरत नहीं लेते, नसीहत नहीं लेते, बल्कि उसके ऊपर और बातें करते हैं। आखिरकार हमने इन्हें अचानक पकड़ लिया और इनको खबर तक न हुई। अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करते, इसको हाईलाइट करिए, आपने अपने हस्बैंड्स भाइयों बेटों जो भी अल्हम्दुलिल्लाह माल कमा रहे हैं उनको देना, क्योंकि इसमें खुशखबरी बहुत है। क्या? अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करते तो हम इन पर आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते। बरकत आसमान से आती है। देखिए कसरत नहीं है, बरकत है, थोड़े में भी बरकत होती है। मगर उन्होंने तो छुटला दिया, लिहाजा हमने इस बुरी कमाई के हिसाब में इनको पकड़ लिया जो वो समेट रहे थे। अफामिन अहलुल कुरा, फिर क्या बस्तियों के लोग अब इससे बेखौफ हो गए कि हमारी गिरफ्त कभी अचानक इन पर रात के वक्त ना आ जाए जबकि वो सोए हों। सोचिए, क्या आज हम मुतमईन होके सो रहे हैं रात को? अल्लाह कहते कभी भी पकड़ा सकती है, या इनको इत्मीनान हो गया कि हमारा मजबूत हाथ कभी यकायक इन पर दिन के वक्त ना पड़ेगा जबकि वो खेल रहे होंगे। क्या ये लोग अल्लाह की चाल से बेखौफ हैं? हालांकि अल्लाह की चाल से वही कौम बेखौफ होती है जो तबाह होने वाली है। तो दुआ कीजिए अल्लाह हमारी इस बेखौफी को दूर कर दे, हमें हर वक्त अल्लाह की पकड़ का गम लग जाए। ऐ अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को पकड़ से बचा, या अल्लाह अगर हम पे कोई अजाब और परेशानी आती है तो जाल्ला तो उसको अपनी रहमत से माफ कर, हमें पक्की सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। अवलम यहदिलिल्लज़ीना यरिसूना अल-अर्ध, और क्या इन लोगों को जो साबिक अहले जमीन के बाद जमीन के वारिस होते हैं इस अमरे वाकई ने कोई सबक ना दिया कि अगर हम चाहें तो इनके कसूरों पर भी इनको पकड़ सकते थे, मगर वो सबक आमोज हकायक से गफलत बरतते हैं और हम इनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते। यही हुआ ब्याज, सुन हो गए, सुनते सुनते सुन हो गए। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं दीन इस्लाम सूद पर्दा नमाज हिजाब हज उमरा, आप कहते सुन लिया, क्योंकि हम बहुत मुस्लिम जो है एक चीज पहली दफा सुने उसका असर होता है, दो चार बार सुने तो अमल ना करें ना तो दिल पे मोहर लग जाती है, अल्लाह ताला हमें बचाए। फिर वो कुछ नहीं सुनते, आज उम्मत ने सुनना छोड़ा हुआ है। ये वो कौमें हैं जिनके किस्से हम आपको सुना रहे हैं, तुम्हारे सामने मिसाल में मौजूद हैं। इनके रसूल इनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज को वो एक दफा झुटला चुके थे फिर वो उसको मानने वाले ना थे। देखो इस तरह मुनकरीन हक के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। हमने इनमें से अक्सर के पास कोई अहद का पास ना पाया बल्कि अक्सर को फासिक पाया, हर दौर में अक्सरियत नाफरमान रही। फिर इन कौमों के बाद जिनका जिक्र किया गया, हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और इसकी कौम के सरदारों के पास भेजा। हजरत मूसा का जिक्र कुरान पाक में बाकी तमाम अंबिया की नस्बत ज्यादा भी है और तवील भी है। अगर सिर्फ हजरत मूसा और बनी इसराइल से रेलिवेंट आयतों को छांटा जाए तो छोटी एक बुक पूरी बन जाती है। यहाँ तफसील से आप उनके किस्से को यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये किस्से आगे और भी डिटेल से आएंगे। क्या है इनकी तफसील? फिर इन कौमों के बाद जिनका जिक्र ऊपर किया गया, हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसकी कौम के सरदारों के पास भेजा, मगर उन्होंने भी हमारी निशानियों के साथ जुल्म किया। क्या होता है निशानियों यानी आयतों के साथ जुल्म? उसको माना नहीं, डिनाई कर दिया। बस देखो इन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। मूसा अलैहि सलाम ने कहा, मैं कायनात के मालिक की तरफ से भेजा हुआ आया हूँ, मेरा मनसब यही है कि अल्लाह का नाम लेकर कोई बात हक के सिवा ना करूं। दुआ कीजिए अल्लाह हमें भी इसी की तौफीक दे, यहाँ इस जगह पर बैठ कर सिर्फ और सिर्फ हक बात निकले और इसके अलावा फिर कोई बात हमारी जुबान से ना निकले। मैं तुम्हारे पास रब की तरफ से सरीह दलीले मामूरियत लेकर आया हूँ, बस तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। फिरौन ने कहा, अगर तू कोई निशानी लाया है और अपने दावे में सच्चा है तो इसे पेश कर दे। मूसा अलैहि सलाम ने अपना असा फेंका और यकायक एक जीता जागता अजदहा था कोबरा, इसने अपनी जेब से हाथ निकाला और सब देखने वालों के सामने वो चमक रहा था। ये दो निशानी है, आप देखिए कि सांप बनने वाली निशानी में खौफ है और यदे बैजा में उम्मीद है। अंबिया कराम की तबलीग का यही तरीका था कि लोगों को खौफ भी दिलाओ जहन्नुम का भी और जन्नत की उम्मीद दिलाओ। बाज दफा तबलीग में हम एक शिद्दत बरतते हैं कि सिर्फ लोगों को डराते हैं डराते हैं डराते हैं और दूसरी तरफ सिर्फ तसल्लियां, कुछ भी नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। तो खौफ और उम्मीद के बीच में ईमान होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने आपस में जब ये मुजजा देख लिया, इस पर फिरौन की कौम के सरदारों ने आपस में कहा कि यकीनन ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है, यानी मूसा के मुजजात को जादू समझे, तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेदखल करना चाहता है, अब कहो क्या कहते हो। फिर इन सब ने फिरौन को मशवरा दिया कि इसे और इसके भाई को इंतजार में रखिए और तमाम शहरों में हरकारे भेज दीजिए कि हर माहिर फन जादूगर को आपके पास ले आए। चुनाचे जादूगर फिरौन के पास आ गए, उन्होंने कहा अगर हम गालिब रहे तो हमें इसका सिला तो जरूर मिलेगा। नोट करें, खुशामदी किस्म के लोग जब दुनिया के लिए कोई आता है तो फौरन कहता है मुझे इसके बारे बदले में क्या मिलेगा, लेकिन जब कोई दीन के लिए आता है तो वो कहता है ये बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। यही फर्क होता है एक दीनदार का और एक दुनियादार का। फिर उन्होंने मूसा से कहा तुम फेंकते हो या हम फेंके? मूसा ने जवाब दिया तुम ही फेंको। ये मूसा का कॉन्फिडेंस है, तुम पहले अपनी बारी ले लो या बाद में, मुझे पता है मेरे पास हक है, और जब मेरा हक सामने आएगा तो तुम्हारा बातिल चला जाएगा। उन्होंने अपने अंचर फेंके तो निगाहों को मस्कूर और दिलों को खौफजदा कर दिया और बड़ा ही जबरदस्त जादू बना लाए। हमने मूसा को इशारा किया, फेंक तो अपने असा को। इनका फेंकना था ज्ञान की आन में वो इनके झूठे तिलसम को निगलता चला गया। क्या मूसा के दिल पे क्या गुजरी होगी, जब देखिए नकली सांप भी देखे तो दिल को कुछ होता है, तो कहां एक असली शक्ल में इतना बड़ा सांप दिखे। और छोटा सांप नहीं था, इतना बड़ा सांप था, कहते हैं मूसा जो ऐसा सांप बनता था कि उस जब मुंह खोलता था जबड़ा तो फिरौन का महल उसमें आ जाता था। कोबरा तो बड़े सांप को ही कहते हैं ना। लेकिन अल्लाह के नबियों ने इस हक को पहुंचाने में कितनी तकलीफें सही, ये भी तो एक उनके ऊपर था। अगर उनको अल्लाह पे यकीन ना होता तो वो तो खुद इस सांप से डर चुके होते। फवकल हक व बतल मा कानू यअमलून। इस तरह जो हक था वो साबित हुआ और जो कुछ उन्होंने बना रखा था वो बातिल होकर रह गया। फिरौन और उसके साथी मैदान मुकाबला में मकलूब हुए और फतेहमंद होने की बजाय उल्टे जलील हो गए। कहते हैं जो किसी के लिए खड़ा होता है खुद उसमें गिरता है। अल्लाह ने फिरौन से वो काम ले लिया जो मूसा बेचारे खुद कर ही नहीं सकते थे। कहाँ मूसा के पास फेसबुक थी और कहाँ व्हाट्सएप था और कहाँ वाइबर था और कहाँ वेबसाइट्स थी कि लोगों को उस दौर में तबलीग करते। अल्लाह ने फिरौन से ये काम ले लिया। तो याद रखिए अल्लाह अपने दीन का काम तो फासिकों से भी ले लेता है। ये दुआ करें कि हमसे अगर कोई दीन का काम ले रहा है तो हमें भी उससे फायदा हो। और खौफ आता है जितने ज्यादा लोगों तक बात पहुंचती है कि कहीं कल क़यामत के दिन मेरी दामन को ना थाम ले। अब हुआ क्या कि मूसा के हालत देखकर जादूगरों के दिल की दुनिया बदल गई। कैसे? फिरौन और उसके साथी मुकाबले में मकलूब हुए और फतेहमंद होने की बजाय उल्टे जलील हो गए। और जादूगरों का यह हाल हुआ गोया किसी चीज ने अंदर से उनको सजदे में गिरा दिया। ये क्या चीज थी? हक की पहचान, मार्फत। उनके दिलों को यकीन हो गया कि अल्लाह ही सच्चा और मूसा का दीन सच्चा। कहने लगे हमने माना रब्बुल आलमीन को, उस रब को जिसे मूसा और हारून मानते हैं। फिरौन ने कहा तुम इस बार ही मान लिया कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। देखिए हर दौर के डिक्टेटर की यही शान होती है कि वो कहता है कि लोगों का दीन मेरी मर्जी का हो। यकीनन ये कोई खुफिया साजिश थी जो तुम लोगों ने इस दारुल सल्तनत में की ताकि इसके मालिकों के इक्तदार से बेदखल कर दो। झूठे इल्जाम। अच्छा तो इसका अब नतीजा तुम्हें मालूम हुआ जाता है। मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिम्मतों से कटवा दूंगा। मुखालिफ क्यों? ताकि न मरे न जिए। जब एक ही तरफ का हाथ और बाजू काट दिया जाए तो अमूमन मौत हो जाती है। तो टॉर्चर देना चाहता था जियो भी ना और मरो भी ना। और इसके बाद फिर तुम सबको सूली पर चढ़ाऊंगा। और फिरौन ऐसे सूली पे नहीं चढ़ाता था जैसे आज हैंग करने का रिवाज है। फिरौन क्या करता था कि दीवारों के साथ लगा के तो हाथों के अंदर भी कील, पाओ के कीलों के साथ ठुकवा देता था, फिर उसके बाद गर्दन कटवाता था। अल्लाह ताला ने उसी चीज को देखिए बवाल बना दिया। उन्होंने जवाब दिया बहरहाल हमें पलटना अपने रब ही की तरफ है। तो जिस बात पर हमसे इंतकाम लेना चाहता वो इसके सिवा और कुछ नहीं कि हमारे रब की निशानियां हमारे सामने आ गई तो हमने इनको मान लिया। हाईलाइट करें, सुबह तक जादूगर और काफिर और लालची आते ही पूछ रहे थे हमें क्या इनाम मिलेगा, और चार्ज के वक्त इतना ईमान कहाँ से आ गया का जो करते हो कर लो हमें कोई फिक्र नहीं है। वजह आपके सामने लिखी हुई है, हाईलाइट करना चाहे तो कर ले कि जब हमारे रब की आयतें हमारे सामने आ गई हमने उनको मान लिया। ये मेरे और आपके लिए भी एक नसीहत है, जब कुरान की कोई आयत समझ आ जाए तो मान ले, दिल खुला होता है, मान लेंगे ना तो जरूरत आएगी। और अगर कहते हैं लेट मी थिंक मोर, और सोच लूं, अच्छा मशवरा कर लूं, अच्छा इस्तखारा कर लूं, तो बस रात गई तो बात गई, सोच ही प्याते बंदा गया। जो बात अमल की कुरान में आ रही है उसको बिस्मिल्लाह करके वेलकम करें, गले से लगा ले। जितना ये करते जाएंगे उतना अल्लाह ताला दिल खोलेगा। और साथ ही मुश्किल लगा तो दुआ मांग ली, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रं व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। ए हमारे रब हम पर सब्र का फैजान कर और हमें दुनिया से उठा तो इस हाल में कि हम तेरे फरमा बरदार हो। आज उम्मत मुस्लिमा पे भी कोई ऐसी फिरौनियत लाहक है तो क्या ये दुआएं मांगने की है? ये दुआएं अल्लाह के हुक्म से इंसान को जरूरत देती हैं। और ये कौन सा सब्र है? इस्लाम पे अमल का सब्र। और मुस्लिम बनाना क्या? कि अल्लाह हम फितनों में पड़कर अपने दीन पे अमल ना छोड़ दें।